आपने पूर्व पाठ में पढ़ा है कि शब्द और अर्थ दोनों ही शब्द का अर्थ के रूप में माना जाता है, तो अर्थ में कहीं कार्यान्वयित होता है और कहीं पर शब्द में कार्यान्वयित होता है। तो जहाँ अर्थ में कार्यान्वयित होता है वहाँ अर्थ विशेष्य के रूप में रहता है और शब्द विशेषण के रूप में रहता है। जहाँ पर शब्द में कार्यान्वयित होता है वहाँ पर शब्द विशेष्य के रूप में होता है और अर्थ विशेषण के रूप में होता है। कार्यान्वयित्व और क्रियान्वयित्व एक ही चीज़ है। इसमें ये प्रश्न किया गया था कि शब्द का अन्वय क्यों नहीं होता, अगर जहाँ अर्थ का अन्वय होता है वहाँ शब्द का अन्वय क्यों नहीं होता। उसके जवाब में दिया गया कि वह जो है ना गुण होता है, माने विशेषण होता है वहाँ पर शब्द, क्यों? क्योंकि वह उच्चारण परतंत्र होता है, अर्थात शब्द का बोध जो है ना वह उच्चारण करने के बाद होता है, उच्चारण करने के से पहले होता नहीं है। क्योंकि उच्चारण जब होगा तब उसको सुनेगा, तब जा करके जो है ना उसका बोध होगा शब्द का। तो उच्चरित परतंत्रत्व, फिर से सुन लीजिए इस शब्द को, उच्चरित परतंत्रत्व रहता है वहाँ पर शब्द में, इसीलिए शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता है। ये प्रसंग पहले आया था। आज 63वीं कारिका में आपको बताया जाएगा कि सामान्यम आश्रितम यद्यत उपमानोपमेयो हो तस्य तस्योपमानेषु धर्मोन्यो व्यतिरिच्यते। प्रश्न यहाँ उठ रहा है कि आपने बताया कि शब्द जो है वह उच्चरित परतंत्र है, उच्चारण परतंत्र है, इसी तरह से अर्थ भी तो उच्चारण परतंत्र होता है। जब तक उच्चारण नहीं होगा तब तक शब्द को सुन नहीं पाएंगे, या शब्द को नहीं सुन पाएंगे तो अर्थ का बोध नहीं होगा। तो ये उच्चारण परतंत्रत्व धर्म जो है ये तो जैसे शब्द में रहता है वैसे ही अर्थ में भी रहता है। तो कार्यान्वयित्व या क्रियान्वयित्व की जो बात हो रही है, आपने जवाब ये दिया कि शब्द जो है उच्चारण परतंत्र रहता है इसलिए उसका उसमें क्रियान्वय नहीं होता या फिर कार्यान्वय नहीं होता, ये सही नहीं है। अगर ये मानेंगे तो अर्थ भी उच्चारण परतंत्र है तो अर्थ में भी क्रिया का अन्वय नहीं हो पाएगा। अब इसको हम व्याकरण के संदर्भ में देखेंगे तो अग्निर ढक सूत्र की बात हमने पहले की हुई है। अग्निर ढक सूत्र कहता है कि अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय हो। तो सूत्र में जो अग्निर ढक में जो अग्नि शब्द है उस अग्नि शब्द का क्या अर्थ होगा, तो अग्नि शब्द के दो अर्थ होंगे। एक तो अग्नि शब्द का अग्नि शब्द अर्थ होगा और दूसरा अग्नि का अर्थ होगा कि लक्ष्य में, प्रयोग में, भाषा में जो अग्नि शब्द है वह जो अग्नि है भाषा वाला अग्नि वह भी उसका अर्थ होगा अग्निर ढक वाले अग्नि का। तो यहाँ पर जैसे शब्द जो है उच्चारण परतंत्र है उसी तरह से अर्थ भी जो है उच्चारण परतंत्र होगा, ये अभी बात बताई गई थी। तो अग्निर ढक से ढक प्रत्यय जो है भाषा वाले अग्नि शब्द से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह जो अग्नि शब्द है भाषा वाला वह तो अर्थ रूप है और अर्थ रूप होने से जैसे शब्द उच्चारण परतंत्र होता है ऐसे ही ये भी तो उच्चारण परतंत्र है। तो कैसे जो है इसमें ढक प्रत्यय किया जाएगा, ये प्रश्न होता है। इसी प्रश्न का उत्तर इस कारिका में बताया गया। कहते हैं कि सामान्यम आश्रितम यद्यत उपमानोपमेयो हो तस्य तस्योपमानेषु धर्मोन्यो व्यतिरिच्यते। उपमान और उपमेय, उपमान समझते हैं ना, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी जिससे सादृश्य बताया जाता है उसे हम उपमान कहते हैं, और उपमेय कहते हैं जिसका सादृश्य बताया जाता है। जैसे मुख का सादृश्य बताया जाता है चंद्रमा से, चंद्रमा की तरह मुख, तो यहाँ पर कौन उपमान है कौन उपमेय है, चंद्रमा हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। तो उपमान और उपमेय जो होता है उसमें परस्पर एक दूसरे का सादृश्य होता है। तो चंद्रमा में कौन सा ऐसा धर्म है जो धर्म के मुख में भी होता है, जिस धर्म के आधार पर, जिस सादृश्य के आधार पर हम जो है उपमा करते हैं मुख का, तो वह धर्म है आह्लादकत्व धर्म, आह्लादित करने वाला धर्म। तो जैसे चंद्रमा में आह्लादित करने वाला धर्म है उसी तरह से मुख में भी अगर आह्लादित करने वाला धर्म हो तो उस वहाँ पर चंद्रमा की उपमा दी जाती है मुख के लिए। तो यहाँ उपमान और उपमेय आप समझ गए कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। अब कहते हैं कि इस उपमान और उपमेय में एक सामान्य धर्म होता है। सामान्य धर्म इसको कहते हैं जो समान रूप से दोनों में हो। जैसे अभी हमने एक धर्म की चर्चा की, आह्लादकत्व धर्म। तो आह्लादकत्व धर्म जो है उपमान मुख में भी रहता है, और आह्लादकत्व धर्म जो है वह उपमेय, आह्लादकत्व धर्म उपमान चंद्र में भी रहता है, और वही आह्लादकत्व धर्म उपमेय मुख में भी रहता है। तो उपमान और उपमेय में जो सामान्य धर्म रहता है, ये बात क्लियर हुई। तो ये सामान्य धर्म तो रहता है, उसके अलावे भी जो है उपमान में कुछ धर्म होते हैं, और उसके अलावे भी जो है उपमेय में कुछ धर्म होते हैं। अब जैसे देखिए कि चंद्रमा में तो ये उजाला करने वाला, चंद्रमा से किरण निकलती है, ये धर्म है ना प्रकाशकत्व धर्म, इसमें चंद्रमा में रहता है। ये मुख में प्रकाशकत्व धर्म रहता है क्या? नहीं रहता है। इसी तरह से चंद्रमा में जो है ना हाथ, ये नाक कान आँख ये सब नहीं है, लेकिन मुख में नाक कान आँख ये सब रहता है ना। तो एक तो सामान्य धर्म होता है जो कि उपमान उपमेय दोनों में होता है, और एक विशेष धर्म होता है जो उपमान में अपना होता है और उपमेय में अपना होता है। इसी बात को कहते हैं कि सामान्यम आश्रितम यद्यत, माने जो जो सामान्य धर्म आश्रित रहता है, जैसे यहाँ पर आह्लादकत्व धर्म हमने बताया वह उपमान और उपमेय दोनों में रहता है। तस्य तस्य उपमानेषु धर्मः अन्यः व्यतिरिच्यते, व्यतिरिच्यते माने भिद्यते, भिन्न होता है। क्या भिन्न होता है? कि उसका तस्य तस्य उपमानेषु, वो जो जो उपमान है उन उपमानों में अन्य धर्म विद्यते, अन्य भी धर्म रहता है। अन्य धर्म रहता है मतलब विशेष धर्म भी रहता है। तो उपमान और उपमेय में एक सामान्य धर्म होता है जो कि दोनों में है, और उपमान उपमेय में विशेष धर्म भी होता है, जो विशेष धर्म केवल उपमान में होता है या फिर केवल उपमेय में होता है, ये बात यहाँ बताएगी। अब इसका जो है समन्वय हम अपने ग्रंथ में कैसे करेंगे? तो हमने अग्निर्धक की बात की थी, तो यहाँ पर सूत्र वाला जो अग्नि शब्द है और भाषा वाला जो अग्नि शब्द है, इन दोनों में एक सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है सामान्य धर्म? तो उच्चारण परतंत्र, परतंत्रत्व धर्म है। उच्चारण परतंत्रत्व सूत्रस्थ अग्नि शब्द में भी है, और उच्चारण परतंत्रत्व भाषाई जो अग्नि शब्द है, प्रयोगस्थ लक्ष्यस्थ जो अग्नि शब्द है उसमें भी है। तो ये हो गया सामान्य धर्म, और विशेष धर्म भी जो है ना दोनों का अपना अपना होता है। अब जैसे जो जो उपमान है, उस उपमान में जो है ना वो प्रकारता होती है, माने विशेषणता होती है, और उपमेय में जो है ना विशेषता होती है। तो विशेषणता और विशेषता, विशेषणता रहती है उपमान में और विशेषता रहती है किसमें? उपमेय में। इसी तरह से उच्चारण परतंत्रत्व जो सामान्य धर्म है, वह सामान्य धर्म तो दोनों में रहेगा, सूत्रस्थ अग्निर्ढक वाले अग्नि शब्द में भी और भाषा वाला जो अग्नि शब्द है उसमें भी, लेकिन दोनों में अपना अपना विशेष धर्म भी होगा। कौन? विशेषत्व और विशेषणत्व। तो विशेषत्व और विशेषणत्व, ये जो विशेष धर्म है, ये भी सूत्रस्थ अग्नि शब्द और लक्ष्यस्थ अग्नि शब्द के अपने अपने धर्म होंगे। कहीं पर जो है जैसे कि पहले हमने उदाहरण बताया था अग्निम उच्चार्य कहेंगे, तो यहाँ पर अग्नि शब्द विशेष रहेगा और अर्थ जो है विशेषण होगा, और अग्निम आनय कहेंगे तो अग्नि अर्थ जो है यहाँ पर विशेष होगा और अग्नि शब्द वहाँ पर विशेषण होगा। तो ये जो विशेषत्व विशेषणत्व धर्म है, यह सूत्रस्थ अग्नि शब्द और प्रयोगस्थ अग्नि शब्द का विशेष धर्म है, और सामान्य धर्म जो है उच्चारण परतंत्रत्व। तो ये जो प्रश्न किया गया था कि उच्चारण परतंत्रत्व धर्म दोनों में समान होता है, सूत्रस्थ में और प्रयोगस्थ में, तो प्रयोगस्थ शब्द से जो है ना कैसे ढक प्रत्यय किया जाएगा? तो उसका उत्तर यही हुआ कि सामान्य धर्म तो है दोनों में एक जैसा, लेकिन अपना अपना विशेष धर्म भी है ना, इस विशेष धर्म के कारण जो है प्रयोगस्थ शब्द में भी ढक प्रत्यय हो जाएगा। अब 64वीं कारिका पढ़ते हैं, गुणः प्रकर्ष हेतु यः स्वातंत्र्येण उपदिश्यते तस्याश्रितात् गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते। अब एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वही सेम कंडीशन में और दो तरह का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए कि शुक्लो घटः, अब शुक्लो घटः में शुक्ल विशेषण है और घटः जो है वह विशेष्य है। अब इसका विपरीत भी प्रयोग देखा जाता है, घटे शुक्लः, अब घटे शुक्लः में घटे घट जो हो गया वह विशेषण हो गया और शुक्लः जो हो गया वह विशेष्य हो गया। तो शुक्लो घटः और घटे शुक्लः, इस तरह से दोनों तरह के प्रयोग होते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि शुक्लो घटः अगर कहेंगे तो वहाँ पर शुक्ल जो है वह अप्रधान होगा माने विशेषण होगा, और घट जो है वह प्रधान होगा विशेष्य होगा। और जब घटे शुक्लः कहेंगे तो घट जो है अप्रधान होगा विशेषण होगा, और शुक्लः जो है वहाँ पर प्रधान होगा और विशेष होगा। ये जो एक्सचेंज होता है, ये जो आपस में परिवर्तित होता है, उसी बात को यहाँ पर कहते हैं गुण प्रकर्ष हेतु। यह प्रकर्ष हेतु यह गुण, हाँ प्रकर्ष का हेतु माने कारण जो गुण होता है। अब जैसे यहाँ पर एक शुक्लो घटा अगर हम कहते हैं तो शुक्लो घटा में प्रकर्ष का हेतु क्या है तो शुक्ल है। कैसे है ये प्रकर्ष का हेतु तो नीलो घटा और शुक्लो घटा, तो नीलो घटा से जो शुक्लो घटा क्या है भिन्न है ना कि अभिन्न है, भिन्न है। तो ये जो भिन्नता प्रतीत होती है शुक्लो घटा और नीलो घटा में किसके कारण, शुक्ल शब्द के कारण। तो प्रकर्ष हेतु का मतलब भिन्नता हेतु, भिन्नता का जो हेतु है, भिन्नता का जो कारण है, ऐसा जो गुण जैसे शुक्लो घटा नीलो घटा में प्रकर्ष का हेतु माने भिन्नता का हेतु कौन है, यहाँ पर कौन सा गुण है तो शुक्ल गुण है। वह शुक्ल गुण स्वातंत्र न उपदिष्टते, यदि स्वातंत्र रूप से कहीं वाक्य में उपदिष्ट होता है, उपदिष्ट होता है माने उच्चारित होता है, और स्वातंत्र रूप से मतलब विशेष्य के रूप में अगर उच्चारित होता है, जैसे मैंने उदाहरण बताया ना घटे शुक्लः पटे शुक्लः, इस तरह जो प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो शुक्ल गुण है वह स्वातंत्र्येन उपदिष्ट है, प्राधान्येन विशेष रूप से जो है यहाँ पर उच्चारण इसका किया गया है। तो प्रकर्ष हेतु माने भिन्नता का कारण जो गुण है, जैसे शुक्लो घटा में शुक्ल, वह शुक्ल जब स्वातंत्र्येन उपदिष्टते स्वतंत्र रूप से वाक्य में उपदिष्ट होता है, स्वतंत्र रूप से कहा जाता है, जैसे घटे शुक्लः पटे शुक्लः इस तरह से जब कहा जाता है तो तस्य आश्रिताद् गुणादेव, तो तस्य जो यहाँ पर कहा तस्य माने घटगत शुक्लादि गुणस्य, घट में रहने वाला जो शुक्ल आदि गुण है, उस शुक्ल गुण का जो आश्रित है, घटगत शुक्ल में जो स्थित गुण है उसको आश्रित गुण कहेंगे, तो उस आश्रित गुण से जो है उसका प्रकृष्टत्व माने भिन्नता जो है उसकी प्रतीति होती है। अब यहाँ समझ में नहीं आया होगा आपको तो ऐसा समझिए कि शुक्लो घटः और घटे शुक्लः, इन दोनों में जो शुक्ल गुण है ये दोनों शुक्ल गुण भिन्न भिन्न है। कैसे भिन्न है तो शुक्लो घटः में जो शुक्ल शब्द रहता है उसमें शुक्ल में विशेषणता रहती है, और घटे शुक्लः में जो शुक्ल गुण है उसमें विशेष्यता रहती है। तो गुण वही है और गुणी भी घट जो है वह वही है, लेकिन प्रयोग अलग होने के कारण जो है दोनों का विशेष विशेषण भाव बदल जाता है। तो फिर से देखिए कारिका को कि प्रकर्ष का हेतु जो गुण है वह जब स्वतंत्र रूप से उपदिष्ट होता है, जैसे शुक्लो घटः में शुक्ल जो है वह अगर घटे शुक्ल इस तरह से प्रयुक्त होता है तो तस्य आश्रितात् गुणादेव, तस्य माने उस घट में रहने वाला जो आश्रित गुण है शुक्ल गुण, उस शुक्ल गुण के कारण ही प्रकृष्टत्व प्रतीत होता है माने भिन्नता प्रतीत होती है। माने शुक्लो घटः वाला जो शुक्ल गुण है वह अलग है और घटे शुक्ल वाला जो शुक्ल गुण है वह अलग है, ऐसी प्रतीति होती है। क्यों प्रतीत होती है, क्योंकि घटे शुक्ल में शुक्ल शब्द को स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया गया है, ये कहा इन्होंने। अब आगे विचार करते हैं कि तस्य अभिधेय भावेन यह शब्द समवस्थितः तस्याप्युच्चारणे रूपम अन्यत् तस्माद् विविच्यते। तस्य मतलब सूत्रस्थ अग्नि शब्दस्य, अग्नेर ढक इत्यादि सूत्र में जो अग्नि शब्द है उस अग्नि शब्द का अभिधेय भाव है ना, अभिधेय कहते हैं वाच्य को, अर्थ को। तो सूत्रस्थ जो अग्नि शब्द है उसका अभिधेय भाव है ना, माने अर्थ भाव है ना, अर्थ के रूप से यह शब्द समवस्थित है, जो शब्द जो है समवस्थित रहता है माने प्रयोग में आता है। तस्यापि उच्चारणे तस्य माने उस वह जो अति अभिधेय रूप में जो अग्नि शब्द है वह भी उच्चारणाधीन होता है, वह भी उच्चारण परतंत्र होता है। तस्मात माने सूत्र घटक अग्नि शब्दात, उस सूत्र घटक अग्नि शब्द से यह जो अन्यत अग्नि शब्द है माने प्रयोग वाला जो अग्नि शब्द है वह विविच्यते माने भिद्यते, वह भिन्न होता है। माने उच्चारण परतंत्र रूप धर्म जो है समान होने के बावजूद भी सूत्रस्थ अग्नि शब्द भिन्न होता है और प्रयोगस्थ अग्नि शब्द जो है वह भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उच्चारण परतंत्र तो सामान्य धर्म है उनका, लेकिन विशेष धर्म के कारण जो है ना वो दोनों जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, सूत्रस्थ और प्रयोगस्थ। इस तरह से 65वीं कारिका को पढ़ने के बाद आज का पाठ हम यहीं रखते हैं। अब अगला पाठ जो है अब नए साल में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। 65 कारिकाएं आपकी पूर्ण हो चुकी हैं और आगे की जो कारिकाएं हैं उसको थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे और आपकी सिलेबस जो है समय से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपका पाठ यहीं पर आज स्थगित करते हैं।